ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. وضرب الله مثلا، اور مثال بیان کی اللہ نے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، ایمان والوں کو فالو کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہے، ایک مثال ہے کہ ہو تو ایسے ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، کتنی بڑی آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہزاروں سال پہلے گزری ان کا ذکر قرآن میں فرما دیا. یہ رہتی دنیا تک لوگ بی بی آسیہ کا ذکر پڑھتے رہیں گے، اور ان کی مثال، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اگزامپل قرار دیا. اگزامپل کس لیے ہوتی ہے؟ فالو کرنے کے لیے نا. تو ان کو ایک اگزامپل قرار دے دیا کہ یہ ہے، تم نے فالو کرنا ہے تو ان کو فالو کرو، یہ ہے ایک نمونہ تمہارے لیے. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے کہا تھا اے میرے رب، میرے لیے جنت میں، میرے لیے اپنے پاس. میں الفاظ کو ایسے ہی کہوں گی تاکہ اردو میں، کیونکہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں بنا دے. ونجینی من فرعون، اور مجھے فرعون جیسے شوہر سے نجات دے. وعملی ہی، اور اس کے عمل سے. ونجینی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے. اب یہ کس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ ایمان لے کر کیسے آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ قبطی قوم میں سے، فرعون کی قوم میں سے ایک وہ رجل المومن جن کا ہم نے ذکر پڑھا تھا، سورہ مومن ساری ہم نے پڑھی، سبحان اللہ، بہت پیارا تذکرہ تھا ان آدمی کا جو ایمان لے آئے فرعون کے دربار میں سے، اور ایک بی بی آسیہ ایمان لے کر آئیں. باقی تو کوئی ایسا قابل ذکر کوئی نہیں ملتا کہ جو ایمان لایا ہو. یہ ایمان کیسے لائیں؟ کہا جاتا ہے کہ ایک روز جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی مشاتا، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ. تو فرعون کی لڑکی نے کہا کیا میرے باپ کے سوا بھی تو کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرے باپ کا ہر چیز کا رب اللہ ہے. اس نے غصے میں آ کے اس کو اتنا پیٹا اور اپنے باپ کو خبر دی. فرعون نے اس کو بلا بھیجا، خود پوچھا کہ کیا تم میرے سوا کسی اور کو خدا مانتی ہو؟ جواب دیا ہاں، میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہی ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں. فرعون نے کہا اس کو چت لٹا کے اس کے ہاتھوں پیروں پہ میخیں گڑوا دو اور سانپ چھوڑ دی جو ان کو کاٹتے رہے. پھر ایک دن آیا اور کہا اب تیرے خیالات بدلے ہیں کہ نہیں؟ وہاں سے جواب دیا، وہاں سے انہوں نے جواب دیا میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہی ہے. فرعون نے کہا اب تیرے سامنے میں تیرے بیٹے کو کہیں آتا ہے بیٹے، کہیں آتا ہے بیٹیاں تھیں، تو تیرے بیٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ورنہ اب بھی میرا کہنا مان لے اور اس دین سے باز آ جا. انہوں نے کہا جو تو کر سکتا ہے کر لے. نے کہا کہ اگر تو میرا نہیں کہنا مانے گی نا، تو پھر دیکھ کہ تیری اولاد پہلے جلے گی پھر تو خود جلے گی، اور اگر تو میرا کہنا مان لیتی تو تیرا گھر سونے سے بھر دوں گا. انہوں نے کہا نہیں، میرا اور تیرا رب تو اللہ ہی ہے، تو جو کر سکتا ہے کر لے. اس نے ایک بہت بڑی دیگ تیل کی منگوائی اور اس کے نیچے آگ جلوائی. جب تیل کھولنے لگا تو کہنے لگا مجھے مانتی ہے یا نہیں، میرا کلمہ پڑھتی ہے یا موسیٰ کا؟ اب اولاد کی محبت کا تقاضا تو یہی تھا کہ کلمہ کفر کہہ دے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس رب نے اولاد دی ہے نا اسی کے نام پہ قربان کر دی جائے. हम सब माए हैं, सोचें जरा कि माँ की मोहब्बत कैसी होती है, और इंसान कैसे अपनी औलाद को अपने सामने तड़पता देख सकता है। अब माँ के सामने उसके मासूम बच्चे को टांगों से पकड़ के खींचा गया और वो अम्मा अम्मा कह के रोता रहा। उस माँ के ऊपर उस वक्त सोचे क्या गुजरी होगी जब उस बच्चे को खोलते हुए तेल में डाल दिया गया, वो ऐसे तल गया जैसे मछली तली जाती है, और माँ ने उफ तक नहीं किया। अल्लाह ताला ने उनके सब्र के ऊपर पर्दा उठा दिया कि माँ ने बच्चे की रूह को निकलते देख लिया। वो बोला अम्मा सब्र करना, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरे दूध पीते बच्चे को पकड़ा, दूध पीता बच्चा माँ को कितना प्यारा होता है, वो ज्यादा प्यार लेता है ना। उसको छीना माँ की गोद से, वो अपनी मासूम आहो बका के साथ हसरत भरी नजरों से माँ को देख रहा है। माँ के सामने उसको भी जलते तेल में डाल दिया गया। ये माँ ही थी ना, कोई पत्थर तो नहीं थी या कोई और तो नहीं थी, मगर अल्लाह की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत के भी ऊपर गालिब आ गई। अल्लाह ताला ने फिर पर्दा उठाया और माँ ने बच्चे की रूह को निकलते हुए देखा। बोला माँ सबर करना, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। जब उसकी बारी आई उसको लेकर चले तो उसने कहा मेरी एक ख्वाहिश है। हाँ बोलो तुम्हारी क्या ख्वाहिश। जब मुझे जला दो तो मुझे भी और मेरे बच्चों को भी इकट्ठा दफन करना। उन्होंने कहा अच्छा तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। उसको भी तेल में डाल दिया गया, उसकी जब से हड्डियां रह गई सारों की हड्डियां निकाल के एक जमीन में दबा दिया गया। और इस बात को 2000 साल गुजर गए, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मकदस जाते हुए जमीन से खुशबू उठती हुई महसूस की। फरमाया जिब्राइल ये खुशबू कैसी है? अर्ज किया अल्लाह के नबी मूसा अलैहि सलाम की उम्मती फिरौन की बांदी अपने बच्चों समेत यहाँ दफन है, ये खुशबू वहां से आ रही है। अल्लाह ने उनकी कब्रों तक को मुअत्तर कर दिया। इस मंजर को देख के ये फिरौन की बीवी मुसलमान हुई थी। ये कोई कितना भी मजबूर हो जाए अपने बच्चों को इस तरह कुर्बान नहीं कर सकता, ये जरूर कलमा हक होगा। हक के सिवा कभी ऐसा नहीं हो सकता है कोई अपनी औलाद को इस तरह सामने देख ले। अब फिर उनको तो उल्टी पड़ गई। अब उसकी सबसे महबूब बीवी जो है वो ईमान ले आई, समझाया बुझाया सब सब बेकार। ईमान का ऐसा नशा था, ईमान का वो नशा ना जब चढ़ जाता है तो उतरने का नाम नहीं लेता। किसी मुजरिम की पिटाई करो तो वो जुर्म छोड़ देता है, शराबी की पिटाई करो शराब का नशा उतर जाएगा। ईमान वाले को जितना मर्जी मारो उसका नशा और बढ़ता जाता है, जितना दुख में डालो उतना ही उसका ईमान बढ़ता है। समझाना बुझाना सब बेफायदा। फिरौन इनको इतना सताता था, सख्त गर्मियों में इनको धूप में खड़ा कर देता था, लेकिन अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के परों का साया इन पे कर देता था, इनको गर्मी की तकलीफ से बचा लेता था। बल्कि जन्नत में इनका मकाम इनको दिखा दिया जाता था जिससे इनकी रूह को ताजगी मिलती थी, ईमान और बढ़ता था। फिरौन ने को जब ये पता चल गया कि ये तो ईमान ले आई है, अल्लाह अकबर, तो उसने कहा कि होती है ना तो मेरे से क्या फर्क पड़ेगा, मेरी अकेली से क्या होना है, और ऐसे क्या कितनी सारी बातें। सोचें जरा इनका ईमान, हालांकि पता है कि फिरौन कितना जालिम है, कुछ हद तक भी जा सकता है, और जो जितनी लग्जरीज में होता है वो उतना ही नाजुक मिजाज भी होता है। ये बात सच है ना, हम जितने नाजुक मिजाज हैं हो सकता है एक हमारी सफाई वाली काम वाली उतनी नाजुक मिजाज नहीं होगी, सख्त जान होगी, हमें कांटा भी चुभ जाए तो हम हाय हाय करते हैं। और ये तो एक मलका थी, मलका थी एक, और इनको इतना टॉर्चर दिया गया, इतने कोड़े मारे गए दरबार में खड़े करके कि खून के छींटे हवा में उड़ रहे होते थे, और ये कह रही होती थी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के हुक्म के आगे कोई मजबूरी नहीं है। पता नहीं मैं और आप क्या जवाब देंगे, जिनके तो छोटी छोटी मजबूरियां ही आड़े आ जाती हैं। जब सारी हरबे फिरौन ने आजमा ली है ना, तो फिर ये सूली पे लटकाने का उसने हुक्म दिया। और वो सूली में क्या होता है, वो इस तरह क्रॉस होता है और उसके ऊपर हाथ लंबे करके उसमें कील गाड़ दिए जाते हैं, और पांव सीधे करके उनमें भी कील गाड़ दिए जाते हैं, और इंसान गड़ा रहता है और उसमें ही सिसकता सिसकता इंसान मर जाता है। अब ये देखें, ये कोई आम बंदी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई सख्त जान, कोई आदमी सख्त जान भी हो तो तब भी वो उसका हाल बुरा हो जाए। और ये कौन है, मलका, जिनके हाथों ने तो कभी कोई लकड़ी भी ना छुई होगी, जिनके पैर तो कभी मट्टी में भी ना उतरे होंगे। मलका थी वो भी फिरौन की बीवी, और फिरौन वो जो कितना ताकतवर और कितना ज्यादा मालदार था, सोचे क्या नाजो नाम में ये पली होंगी। और इनके हाथों और पैरों में कील गाड़ दिए, ऐसी दर्द की आहें और कराहें थी कि बेसाख्ता मुंह से निकला है मेरे रब। फिरौन ने फिर कहा कि लकड़ी को नीचे लिटा दो और बड़ी पत्थर की चट्टान इनके ऊपर फेंको, और इनको कहो कि इस अकीदे से बाज आ जाए। अगर बाज आ जाए तो मेरी बीवी है, इज्जत और हुर्मत के साथ इसको वापस ले आऊंगा। अगर ना माने तो इस चट्टान को इसके ऊपर गिरा दो और इसका कीमा कीमा कर दो। जब ये लोग पत्थर लाए, इन्हें लिटाया गया और पत्थर इनके ऊपर गिराने के लिए उठाया गया, तो तब इन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई, उन्होंने ये दुआ की, अल्लाह ताला ने सारे पर्दे हटा दिए और जन्नत में इनको इनका मकाम दिखाया, और इनकी रूह परवाज कर गई। जिस वक्त इनके ऊपर पत्थर फेंका गया था, उस वक्त इनके अंदर रूह नहीं थी। और देखिए, मुस्कुरा रही थी अपना मकाम देख के। उस वक्त फिरौन कहने लगा इनको हंसता हुआ देख के कि तुम्हें हैरत नहीं होती, इतनी सख्त सजा में मुबतला और हंस रही है, इसका दिमाग लगता है बिल्कुल खराब हो गया। और इन्हीं अजाबों के अंदर जो टॉर्चर थे, इन्हीं के अंदर ये शहीद हुई। देखे तो उलमा कहते हैं कि इनकी दुआ के ऊपर जरा गौर करो। ये उलमा लिखते कराम लिखते हैं कि दुआ में गौर करें कि सबसे पहले अल्लाह ताला से क्या मांग रही है। अल्लाह अपने पास एक घर देना, सबसे पहले ये नहीं कह रही अल्लाह मुझे जन्नत देना, लहमनी असलू का जन्नतुल फिरदौस नहीं कह रही, रब इब्नी ले इंदा का अपने पास, जिसको रब से मोहब्बत हो उसके पास अपने पास देना, अपने करीब कर लेना, वहां पे मुझे घर अता फरमाना, और मुझे फिरौन नहीं चाहिए, वरना फिरौन के साथ रहती तो क्या 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 नहीं मिला हुआ था उनको, क्या क्या महल नहीं थे, क्या उनका स्टेटस था, सोचे क्या उनके नाज अंदाज होंगे, क्वीन थी आखिर, और बड़ी चहेती थी। इन्हीं के कहने में तो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक्सेप्ट किया था। तो और इसके अमल से भी अल्लाह मुझे निजात दे, यानी अल्लाह मुझे इसके कामों में शामिल ना करना, यानी फिरौन के कामों से भी बेजार थी। वो नजीनी मिनल कौम जालिमीन, और अल्लाह मुझे निजात दे जालिम कौम से। इसका मतलब है कि फिरौन की बदामालियों की ये जिम्मेदार नहीं, किसी का शौहर अगर बदामाल है, किसी का शौहर अगर बुरे काम करने वाला है, वो औरत अगर जाहिर सी बात है अपने आप को सही रखती है, उसका तो जोर नहीं है शौहर के ऊपर, तो उसको इसके ऊपर पकड़ नहीं की जाएगी कि तुम्हारा शौहर ऐसा था तो तुम्हें इसके ऊपर पकड़ है, नहीं, वो अपनी हद तक जितनी मुमकिन वो अपनी हद तक है वो अपनी कोशिश करे, उसको इसके जिम्मेदार नहीं करार दिया जाएगा। बल्कि ऐसे लोगों का अजर डबल है, दोहरा अजर व सवाब है उन लोगों का जो अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, वो किसी के अंडर होते हैं। जैसे हदीस में आता है गुलाम, गुलाम अल्लाह की बंदगी करता भी है और वो अपने मालिक की भी बात सुनता है, तो उसके लिए दो राजा है। क्योंकि एक आम आदमी तो आजाद है ना, आम आदमी पर तो वो पाबंदियां ही नहीं है, लेकिन गुलाम देखिए एक ही बंदे के अंडर है, उसका गुलाम है, वो उसको उसकी भी इताअत करनी है, उसकी भी सुननी है और अल्लाह का भी हकूक अदा करने, तो उसके लिए डबल अजर है। इसी तरह औरत, औरत है, अपने शोहर की भी इताअत कर रही है और अल्लाह ताला की इताअत भी कर रही है। और जाहिर है कई जैसे औरतें कहती हैं कि उनके पर लिमिटेशंस हैं, वो कितना कुछ नहीं कर सकती जो दूसरी औरतें कर सकती हैं जिनके हस्बैंड उनके साथ मुआवे ने दीन के अंदर। तो अब वो जितना भी कर रही हैं अपनी हत्तुल इम्कान कोशिश के साथ, तो उनको डबल अजर मिलता है कि वो अल्लाह की इताअत भी कर रही है और शोहर की भी। यहाँ पे देखें फिरौन का अमल कितना बुरा था, लेकिन उनको गर्दाना नहीं किया इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल। बाज दफा औरतें यही कहती रहती हैं बस ये ठीक हो जाए तो फिर है, नहीं वो ठीक हो नहीं हो आपसे उनकी, आप उनकी जिम्मेदार नहीं। हाँ आदमी अपनी बीवी और बच्चों का जिम्मेदार है, औरत अपने शौहर की जिम्मेदार नहीं है, वो अपने बच्चों की जिम्मेदार है। तो यहाँ पे इतने बदतरीन माहौल में एक बेहतरीन औरत, तो इंसान किसी भी माहौल में रहे, वो किसी भी जगह पे रहे, वो अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। अगर वो कमजोर है, बेबस है, माहौल को नहीं बदल सकता, तो कम अज कम खुद को तो सही रास्ते पे रखे। और इनकी देखें बेजारी कितनी शदीद है कि ऐशो आराम में है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी उसमें ऐसे किसी बहुत गुर्बत में या इसमें हो, नहीं इतने बड़े महल में रह रही है फिर भी कह रही है कि अल्लाह मुझे निजात दे इससे। वह मरियम, वह मरियम इब्नत इमरान, और मरियम बेटी इमरान की है, ये भी एक एग्जाम्पल है ईमान वाली औरतों के लिए। अल्लती अहसनत फरजहा, जिसने हिफाजत की अपनी शर्मगाह की, और यहाँ पे सिर्फ शर्मगाह माना नहीं होगा बल्कि फर्ज कहते हैं हर वो चीज जहाँ से अंदेशा हो इंसान का बुराई में पड़ने का, जिस जगह से बुराई दाखिल हो सकती हो, मसलन कानों से, कानों में बुरी बातें जाती है ना, आंखों से इंसान बुराई देखता है, इसी तरह शर्मगाह भी इसमें आ गई। तो ऐसे हर रास्ते से उन्होंने खुद को बचाया। देखें कुरान तारीफ कर रहा है इनके किरदार की, ये उस एज में, जिस एज में इंसान समझ लें कि बहुत ज्यादा चांस होता है किसी लड़की का गलत रास्ते पे जाने का, उस वक्त उन्होंने जवानी में अपने इज्जत को बेदाग रखा, जवानी में उन्होंने अपनी इज्जत की हिफाजत की, कोई बुरा काम नहीं किया, हया के साथ रही। वरना आप देखें वो कैसी जगह पे रहती थी, हैकल में रहती थी ना, पब्लिक प्लेस थी, वहां पे हर तरह के आदमी भी आते होंगे, लोग आते होंगे, सारे पब्लिक प्लेसेस में सबका आना जाना होता है, और इन पे कोई ऐसा निगरान भी नहीं था जो हर वक्त इनको, कोई घर में तो रहती नहीं थी कि हर वक्त इनको कोई वॉच कर रहा है, कोई बाप सर पे है या कुछ है, नहीं। फिर भी इन्होंने हराम कामों से खुद को बचाया, और ऐसी एज में जिसमें बहुत कॉमन होता है लोगों का दोस्तियां करना और ऐसे ताल्लुकात रखना, और वो उस वक्त भी अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली थी। तो अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं दर्जे बुलंद कर देता। इनकी कितनी पहली इनकी खूबी यही बयान की गई, पहली तारीफ इनकी यही की गई कि ऐसी एज में भी इन्होंने अपनी इज्जत की हिफाजत की, और उस वक्त माहौल भी ऐसा था कि बनी इसराइल बहुत ही जवाल का शिकार थे, बहुत बिगड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने माहौल से खुद को बचा के रखा, नेकी पे कायम रही। उन्होंने ये नहीं ब्लेम कर दिया कि माहौल का ही तो सारा असर है, माहौल ही ऐसा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, नहीं। कानों को भी बचाया, आंखों को भी बचाया, हर तरह से खुद को महफूज रखा। फनफख नफीह मिन रूहिना, तो अल्लाह ने भी उनको चुन लिया, फिर फूंक दिया हमने इसमें अपनी रूह से, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने फिर फरिश्ते को भेजा जिसने इनके अंदर फूंक मारी इनके कुर्ते में और ये हामिला हो गई। अब आप ये भी देखें कि उस वक्त भी इन्होंने क्या कहा था, हमने पहले पढ़ चुके हैं सूरह मरियम में ही कि इन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, तेरे से अगर तू कोई नेक इंसान है तो अल्लाह ताला की मैं पनाह में आती हूँ। फरिश्ते को उन्होंने मर्द समझा ना। وصدقت بھی کلمات ربی ہے، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، یعنی فرشتے ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کے جو کہا جیسے کہا جو اللہ نے حکم دیا سب چیزوں پر یہ عمل کرتی رہی، وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں پر، اس وقت تورات تو تھی نا، تورات بھی تھی اور اس وقت زبور بھی تھی، تو اس کے اوپر یہ ایمان لانے والی تھی. یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، دیکھیں آج ہم کہتے ہیں نا عورتوں کا پڑھنا کہاں پہ ہے اور عورتیں کیوں قرآن پڑھیں اور سب کریں، دیکھیں ہزاروں سال پہلے کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی اور ان کی یہ ان کی علم کی ایک بات ہے، تعریف ہے کہ ان کے اندر علمی صلاحیت جو تھی اور کس طرح تصدیق کی انہوں نے کتابوں کی. تصدیق کس طرح کی جاتی ہے، ویریفائی کیسے کیا جاتا ہے، جب انسان نے کوئی چیز پڑھی ہو سمجھی ہو اسی کو کرتے ہیں نا، آپ سگنیچر ایسے ہی کر دیتے ہیں، کوئی ایک پیپر بھی ہو تو اس کے اوپر بھی ایسے ہی سگنیچر نہیں کرتے نا، جب تک اس کو پڑھ نہیں لیتے. تو اس کا مطلب انہوں نے کتابوں کو پڑھا تھا، سیکھا تھا، سمجھا تھا، تبھی اس کو اس کی تصدیق کی نا، ویریفائی کیا. بغیر سوچے سمجھے بغیر کوئی کتاب کھولے ہوئے تو نہیں آپ اس کی تصدیق کر سکتے. تو ہم جو کر رہے ہیں کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے قرآن سیکھ کے سمجھ کے. یہ آپ حضرت مریم کی تعریف دیکھیں گے، اتنے ہزاروں سال پہلے یہ کتاب کا علم لینے والی تھی. اور وکانت من القانتین، اور قانتین میں سے تھیں، فرما برداروں میں سے تھیں، جو ہمیشہ فرما بردار رہتا ہے آپ کو پتا ہے نا، وہ ہوتا ہے نا قانت. تو دیکھیں یہ ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے والی تھی، ورنہ ایک نیک لڑکی کے لیے سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ حاملہ ہو کے آ جائے اور پھر لوگوں کے اندر آئے، اور جس نے ہر وقت اپنی عزت کی حفاظت کی ہو. عورت کے لیے تو سب سے بڑا یعنی ایک بدنامی اور برائی کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر زنا یا اس طرح کے کسی یعنی حرام اس میں ملوث ہوئی ہو، اور یہ حاملہ اور ایک بچہ اٹھائے ہوئے آ رہی ہے اور بچہ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہی ہیں، تو ان کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا. اس جو انسان عفت اور پاک دامنی کے ساتھ رہا ہو اس کے لیے تو بہت شدید یہ بات ہے، اس سے بڑا کوئی امتحان ہو ہی نہیں سکتا کسی نوجوان عورت کے لیے. یہ تو ایک سیدھا سیدھا یہ ایک بات تھی کہ ہاں اس کا کسی کے ساتھ تعلق رہا ہے، لیکن وہ فرما بردار تھیں. اس وقت بھی انہوں نے سر تسلیم خم کیا، اللہ کے ہر حکم کے آگے ہر امتحان میں کامیاب ہوئی، یہ بھی امتحان تھے ان کے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ٹائٹل ایک نوجوان لڑکی کو دیا ہے، اور کنواری لڑکیوں کے لیے یہ بہت بہترین مثال ہے حضرت مریم کی کہ ان کو کیسا ہونا چاہیے. اسی طرح شادی شدہ عورتوں کے لیے بی بی آسیہ کی مثال بہت زبردست ہے کہ انسان ان کو رول ماڈل بنائے ہر ایک حالات میں، ہر ایک زمانے میں، ہر ایک طرح کے ماحول میں. انسان بے شک ماحول کا اثر ہوتا ہے، لیکن انسان خود کو سیدھا رکھ سکتا ہے. دیکھیں ان عورتوں نے اپنے آپ کو رکھا نا، یہ نہیں انسان کہہ سکتا ایج ایسی ہے، یہ نہیں انسان کہہ سکتا ماحول ایسا ہے، نہیں، ان چیزوں پہ بلیم کر کے انسان اس دن بری ذمہ نہیں ہو سکتا. آج تو کہتے ہیں نا جوانی دیوانی بس یہ ہے وہ، نہیں، اصل مریم کو بھی تو دیکھیں. اور جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ کتنے آرام سے یہ کہہ دیتی ہیں تو ہسبینڈ کا پریشر ہے، ان کا سسرال کا پریشر ہے، فلانے کا یہ ہے. نہیں، حضرت آسیہ کی مثال دیکھو، کس کا شوہر فرعون سے بھی بڑھ کے ہوگا یا اس جیسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس طرح کے بہانے بناتے ہیں اور عمل سے بچنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثالیں دے دی. ایک طرف وہ دونوں عورتوں کی مثالیں تھیں جو بدترین عورتیں بہترین ماحول میں، ایک یہ مثال ہے حضرت آسیہ کی بدترین ماحول میں بہترین عورت، تو ایک حضرت مریم کی بھی مثال ہے کہ وہ کیسی اپنی جوانی کی، وہ بھی اگر آپ یہ کہہ لیں کہ بہترین ماحول میں بہترین عورت، اور اب ایک رہ گئی صرف بدترین ماحول میں بدترین عورت، تو وہ ابو لہب کی بیوی جس کا ذکر آگے آئے گا ام جمیل کا 30ویں پارے میں. ہر طرح کی مثالیں، انسان کو جو بھی ماحول ملے انسان اس ماحول میں ماحول کو بلیم نہ کرے، اپنے آپ کو کرے، ماحول کا بہانہ نہ کرے. ماحول کے بہانے کر کے ہم اللہ کے پاس چھوٹ نہیں سکیں گے کہ ہم میں اس زمانے میں پیدا ہوئی، وہ ایسا تھا، وہ اتنا ایڈوانس تھا، پھر میں کیا کرتی. یہ دیکھو مثالیں، अगर तुम अपने अंदर को बदल लोगे तो माहौल तुम्हें कुछ नहीं फर्क करेगा। और अगर तुम्हारा अपना अंदर नहीं बदला हुआ तो पैगंबर का साथ भी मिल जाए तो सीधे नहीं हो सकता इंसान। यहाँ पे हम ये देखें, बार दफा हम ये कहते हैं कि हस्बैंड के हुक्म माने कि अल्लाह को हुक्म माने, ये बीबी आसिया इतने जालिम शोहर के होते हुए भी इन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम जन्नती औरतों में से अफजल हजरत खदीजा है, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद, हजरत मरियम और हजरत आसिया है, जो फिरौन की बीवी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी और मुस्लिम में है कि मर्दों में तो साहिबे कमाल बहुत सारे हैं, लेकिन औरतों में कमाल वाली औरतें, कामिल औरतें सिर्फ हजरत आसिया है, हजरत मरियम है और हजरत खदीजा है। हजरत आयशा की मिसाल ऐसी है जैसे सालन में चूरी हुई रोटी की फजीलत बाकी खानों पे होती है, सरीद उसको कहा जाता है। लेकिन ये है ना औरतों में अफजल तरीन औरतें दुनिया की ये है। इसीलिए जब हजरत खतीजा का इंतकाल होने वाला था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अपनी सौकन को मेरा सलाम कहना। तो उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे से पहले भी आपकी कोई बीवी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत में मेरा निकाह आसिया के साथ कर दिया। तो अल्लाह ताला किसी की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह ताला इन औरतों के नक्शे कदम पे चलने की हमें भी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हर शर से महफूज रखे हमारे ऊपर। कभी भी अल्लाह ताला ऐसे हालात और ऐसे उनसे महफूज रखे, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मौके नहीं आए ऐसा ही ईमान के लिए इतनी कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन जो छोटी 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 बातें होती हैं उनके अंदर ही हम हार मान जाते हैं। तो इसमें इस मिसाल को हमें सामने रखना चाहिए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक।